Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और उसका हेतुभूत जो है बल है ज्ञान है, ऐसे उस ज्ञान से हमें संपन्न करे, और उससे जब हम संपन्न हो जाएंगे तभी मैं कौन हूं इस बात को जान पाएंगे, या हमारा जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति हो सकेगी, और या जो हमारी ये अभीप्सा है कि मेरी कभी मृत्यु न हो, और मृत्यु शब्द छोड़ो, मेरा कभी अभाव न हो, क्योंकि मृत्यु को तो क्या कह दिया बृहदारण्यकादि श्रुतियों के अंदर जहां चर्चा आई, तो मृत्यु को क्या कहा है वहां, तो अंतिम मृत्यु कह करके वहां संकेत कर दिया, और वो मृत्यु जो है वो क्या है, तो कहने लगे वो मृत्यु आत्मा ही मृत्यु है, उस आत्मा से भिन्न कोई मृत्यु नहीं, जिसको भगवान ने गीता में कह दिया अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं। तो वहां अंतिम मृत्यु की बात कही, वहां सीढ़ियां बताई मृत्यु की, क्रम से उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है याज्ञवल्क्य आदि के प्रसंग में। तो यहां पर जो है मतलब तात्पर्य इतना है कि कोई भी अपनी सत्ता का अभाव कभी चाहता नहीं, वो चाहता है हमारी सत्ता सदैव बनी रहे, लेकिन अब इस चाहने में है क्या, सत्ता तो कभी अभाव सत्ता का होता नहीं, आप गीता ही में पढ़ते हो है? सत का कभी अभाव और असत का कभी भाव, लेकिन फिर हमारा भाव क्यों हो जाता, हमारी मृत्यु क्यों हो जाती, तो कहने लगे यहीं पर समझने की बात है, यहीं पर इस बल की जरूरत है, यहीं पर इस ज्ञान की जरूरत है कि जो अभाव होता है वो किसका होता है, क्योंकि सत्ता तो कभी अभाव से रहित हो नहीं सकती, जो सत्ता है सत्ता किसकी होगी, सत्य की होगी, और सत्य क्या है, जो त्रिकालावादित है, तीनों कालों में जिसका वाद नहीं होता, तो फिर हमारा वाद क्यों हो गया, हमारा भाव क्यों हो गया, हमारी मृत्यु क्यों हो गई, तो कहने लगे आपने अपने को समझा ही, इसी की जरूरत है, और जब इस चीज को समझ लोगे तो क्या होगा, तो कहने लगे फिर तुम्हारा कभी अभाव नहीं, तुम अमृत रूप हो जाओगे। तो अब जो है हमको कहीं न कहीं भूल हो गई है, हमारे में कहीं न कहीं विस्मृति आ गई, विस्मृति का प्रमाद का नाम ही मृत्यु है, तो हमारे में कहीं भूल हो गई, हम जो नहीं है वो हमने अपने को मान लिया, और ये निश्चित है जो मानोगे वो मानी हुई वस्तु सदा टिकने वाली, जो मान्यता होती है वो मान्यता सदा टिकती नहीं, टिकती क्या चीज है, जो यथार्थ में है, जैसे एक मनुष्य ये सामान्य धर्म, अब उसमें विशेष धर्म क्या हो गया, का साधु है, फिर उसमें जो है और भी हो जाते डॉक्टर इंजीनियर आदि धर्म हो गए, लेकिन ये सारे धर्म कैसे, एक क्रिया विशेष को लेके, एक संस्कार विशेष को लेके, लेकिन वो क्रिया विशेष को लेके होने वाले, संस्कार विशेष को लेकर होने वाले, वो नियम नहीं है कि सदा रहे, उनका कभी भी अभाव हो सकता, लेकिन मनुष्यत्व जो है वो जब तक मनुष्य है तब तक उसकी मनुष्यत्व का अभाव नहीं, वही हम लाल कपड़े पहन लिए तो आप कहते हो बाबा जी, ठीक है ना, और ये कपड़े हम पहन करके आप जैसे पहने तो क्या कहोगे, तो बाबा जी कहोगे, लेकिन इन कपड़ों को पहनने पर, लाल कपड़ों को पहनने पर जो हमारी मनुष्यता थी वो तो बरकरार दोनों जगह थी कि नहीं, तो रहेगी, ऐसे ही सत्ता जो है उसका अपलाप नहीं होता, किंतु उसमें जो हमने एक मान्यता स्थापित कर ली, एक जो हमने संपादन कर लिया, एक जो हमने आरोपण कर लिया, वो आरोपण जो है वही क्या है, आता और जाता, उसमें ही परिवर्तन होता, उसी का भावाभाव होता, अभाव उसका होता है, लेकिन जब उसी को संपादन को ही हमने समझ लिया, संपादन रूप ही मैं हूं, ऐसे संपादन को ही हमने संपद समझ लिया, संपद माने ज्ञान भी होता है, संपद माने संपादन भी होता है, संपादन शब्द का अर्थ है आरोपण, तो संपद माने ज्ञान भी है और संपद माने आरोपण भी है, तो अब जो हमको ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, आरोपित ज्ञान है, और आरोपित जब तक ज्ञान रहेगा तब तक ये मृत्यु पीछा छोड़ेगी, तब तक भावाभाव की स्थिति रहेगी, और इस आरोपण को हमने आरोप यदि समझ लिया है, जैसे आप समझते हो कि वस्त्र को हमने पहन लिया तो उतारने में भी समर्थ होते, ठीक है, तो अब ऐसे जब समझ लोगे तो फिर वस्त्र जो है उतारने में भी आप समर्थ हो, पहनने में भी समर्थ हो, लेकिन अब ये नहीं कहोगे कि मैं वस्त्र हूं, क्या कहोगे, मैं इससे अलग, ये तो मेरा आवरण है और ये तो नासमान है, इसलिए उसमें इतनी अभिरुचि नहीं होगी। तात्कालिक अभिरुचि होगी, अपने को मैंने सुरक्षित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप करोगे, लेकिन आप ये जानते हो कि ये मैं नहीं। तो ऐसे ज्ञान करने के लिए, ऐसे उस आरोपण को जो है विस्मृत करने के लिए, अब उसको विस्मृत कैसे करोगे, तो उसके लिए समझने के लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य, वो मेधा शक्ति कहां से प्राप्त होगी, तो उसके लिए ही प्रार्थना की कि जो वह इंद्र है, ईश्वर है, वह ईश्वर क्या करे कि मुझे ऐसी बुद्धि के अंदर मेधा शक्ति दे कि इस चीज को मैं ठीक ठीक समझ सकूं, अपनी भूल को सुधार सकूं। हमारा जो मैंने भूल हुई है, हमसे जो भ्रांति हुई है, उसको हम सुधारने में समर्थ हो सकूं, ऐसा संकेत करता। अब अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, वह देव मेरे लिए क्या है, अमृत धारण कराने वाला हो जाए। उस देव से प्रार्थना करता, मैं अमृत धारण करने वाला हो जाऊं, और जब इस प्रकार से बल मिल जाएगा तो उस अमृतत्व की भी प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए जो है उस देव से प्रार्थना करते हैं। तो अब जो है इस प्रकार से बताते हुए वे शरीरम वे विचर्षम आदि सब करके कहा, और आगे संकेत कर दिया कि ये सब कुछ होते हुए जिस लोक व्यवहार के अंतर्गत हम अपनी चर्या में चर्यान्वित हैं, जी रहे हैं, वहां पर भी कैसी स्थिति होनी चाहिए, हम यदि ये चाहते हैं तो यहां पर लोक व्यवहार का भी अपलाप नहीं किया। लोक व्यवहार में तुम्हारे में एक मधुरता आ जानी चाहिए, लोक व्यवहार में भी तुम्हारे अंदर एक प्रियता आ जानी चाहिए। अब उस मधुरता कैसे आएगी, प्रियता कैसे आएगी, जिससे तुम भी सदा प्रसन्न रहो और तुम्हारे आसपास रहने वाले भी सदा प्रसन्न रहे, वो कैसे होगी। तो यहां पर स्थूल रूप से संकेत किया कि ज्योहा में मधुमत्तमा, क्या होना चाहिए, कहा मेरी ज्योहा कैसी हो जाए, मधु नहीं, मीठी नहीं, क्या कहा, मधुमत्तमा, तम प्रत्यय लगा दिया, इतनी मीठी, इतनी मीठी कि उससे मीठा कोई हो ही नहीं है ना, ये और ऐसा हो जाना चाहिए। तो जी जिह्वा मीठी कैसे होगी, कहा रसगुल्ला खा लो मीठी हो जाए, कहा ये नहीं, जिह्वा के मिठास के लिए क्या मने, आपकी वाणी में वह मधुरता, आपकी वाणी में वह मिठास होना चाहिए कि जिस वाणी को श्रवण करते ही सामने वाला जो है प्रसन्न हो जाए, है ना। इसलिए वाणी की जहां चर्चा आई तो संकेत कर दिया सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ये सब संकेत किया, और उसके साथ साथ कहा सत्यम हितम मितम मधु, मधु शब्द का भी प्रयोग कर दिया। ये वाणी की सौष्ठवता को बतलाया, वाणी की सौष्ठवता वास्तव में क्या है, तो जहां पर वाणी हमारी जो है इन धर्मों से युक्त है, माने सत्य भी है उसमें, लेकिन सत्य के साथ साथ में वहां पर जोड़ दिया वह सत्य जो तुम बोल रहे हो वह कैसा भी होना चाहिए, का हितकर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का अनहित करने वाला सत्य हो, तब कैसे सत्य को, तो सत्यम ब्रुवा प्रियम ब्रुवा, संकेत जोड़ दिया, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रियम सत्यम मा ब्रुवा, अप्रिय सत्य भी है तो उसे बोलो नहीं, क्योंकि उससे सामने वाले को कष्ट होगा, अनित होगा। तो ये सब संकेत कर दिया, इसलिए कहा कि मधुमत्तमा, वाणी मेरी कैसी हो, उत्तम मधु से युक्त हो। और जानते हो संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं वो किसको लेके होते, वाणी को लेकर के होते, वाणी के द्वारा ही भाई भाई में शत्रुता हो जाती है ना, और वाणी के द्वारा ही शत्रु भी मित्र बन जाते, कहीं पर शत्रु मित्र बन जाता है और कहीं पर मित्र जो है शत्रु बन जाता है, क्यों कि एक वाणी को लेकर। लोग देहात में कहते ना कि गोली का घाव उतना है भयंकर नहीं होता है जितना बोली का होता है, गोली का घाव तो जो है क्या होता, घाव इलाज करने से, उपचार करने से भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जल्दी जाता, और गोली के घाव में तो जैसे जैसे उसका है मरम पट्टी करते हो तो धीरे धीरे क्या होता, उसका जो जलन है, उसका जो कष्ट है वो भी समाप्त हो जाता, लेकिन बोली का जो कष्ट है वो तो अयरनिश हमको क्या करता रहता, हमारी अंतर अंतर ही दग्ध करता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। आप जो है केवल जो है आप जाकर के जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, होम कर रहे हो, तो ये संकेत इसका मतलब यहां पर ये दे रहे हैं कि जप भी उत्तम है, जप के लिए करेंगे भी, तप भी उत्तम है, होम आदि भी उत्तम है, वो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ में जो सामान्य चर्या में कर्म है वहां से आपको प्रारंभ करना। यदि पहली सीढ़ी नहीं संभलेगी तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना भी कठिन होगा। इसलिए कहा कि वाणी कैसी हो जाए तो मधुमत्तमा, मधुरता से युक्त हो जाए वाणी में। सर्वत्र आप जहां बोले तो आपकी वो वाणी के अंदर वो अलंकार होने चाहिए, वो रस होना चाहिए, वो गुण होने चाहिए, वो सौष्ठवता होनी चाहिए, और ये सब जो है जब हो जाएंगे तो वाणी में वही लालित्य आ जाता है। सामने वाला उस वाणी को सुनकर के जो है आनंदित हो जाता है, और वो आनंदित होता और तुम स्वयं उनको लेकर के बोलते हो तो तुम्हारे अंदर भी आनंद होता। इसलिए संकेत किया कि वाणी को लेकर के आ जिह्वा में मधुमत्तमा, जिह्वा से जो भी शब्द का उच्चारण हो वो शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए, जो भी प्रयत्न हो, इसलिए पहले प्रयत्न की, स्वर की है ना, और मात्राओं की चर्चा करते। वाणी तो एक ही है, लोग कहते नहीं, किसी ने कहा कोई बैठे थे या मान लो कुछ सहेलियां बैठी थी, उधर से देखा तो एक ने कहा कि जो है तुम्हारे हैं पतिदेव आ रहे, तो उसे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी कहने लगी तुम्हारे खसम आ रहे। अब दोनों का अर्थ एक ही, दोनों का अर्थ एक ही, अर्थ में कोई अंतर नहीं और लक्ष्य भी एक ही, लेकिन उस वाणी के व्यवहार से क्या हुआ, एक के शब्द सुनकर के उसके हृदय में जलन पैदा हो गई ईसा, और दूसरे के शब्द सुनकर के उसके हृदय में प्रसन्नता हुई। तो अब जो है शब्द का हमने जो चयन किया और शब्द का चयन करके उन शब्दों का जो वाक्य विन्यास किया या वाक्य को जो है योजना की, उसकी रचना की, और रचना भी इस बात पर निर्भर करती। तो वाणी में, जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो हमारे जीवन में उन शब्दों को, वर्णों को यानी क्या है समायोजित करने की एक कला होनी चाहिए, उनकी रचना करने की एक कला होनी चाहिए, और उनको जो है उस प्रकार से जब करेंगे तो उनमें है अलंकार का मतलब ही होता, साहित्य में तो अयमक आदि और अनुप्रास आदि अलंकार कहे, अलंकार का मतलब क्या है, उसे ऐसे सजा देना, जैसे हम लोग अलंकार आभूषण पहनते, तो अब उसे ऐसे सजा देना कि उस शब्द वही है लेकिन उस शब्द के अंतर्गत रस आ जाए। और आप जानते हो इसके लिए स्वर, मात्रा ये भी उसमें, उदात्तादि स्वर ये भी उसमें ध्यान रखते, क्योंकि कहीं पर जो है आप जब उच्चारण करते हो वर्ण कहा और आपने उच्चारण मध्यम ध्वनि से किया, सामादि की चर्चा की, तो वहां पर क्या है सुनने वाले को कोई कष्ट नहीं, और उसी का उच्चारण आपने है थोड़े कर्कशता से कर दिया तो सामने वाले को कष्ट हो, इसलिए उच्चारण पर भी ध्यान, ये सब संगीता इत्यादि इसलिए बतलाई थी। तो यहां पर कहते हैं कि जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो जिह्वा की मधुरता तभी आएगी हमारे शब्दों का और शब्दों के द्वारा वाक्यों का जो योजना उनकी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो अलंकार आदि से युक्त होनी चाहिए, मने उसमें सौंदर्य होना चाहिए, उसमें सामत्व आदि विद्यमान होना चाहिए, उसमें मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, उदात्त अनुदात सुरद का ध्यान रखना, और इन सब के लेकर के जब हम उस वाक्य को मने रचित करते हैं, वाक्य का उच्चार करते हैं, तो वही वाक्य दूसरों के हृदय को प्रसन्न कर दे और हमारे हृदय को भी प्रसन्न कर दे। इसलिए कहा कि वाणी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। तो हमारी व्यवहार में भी पहले मधुरता आए तब हम जो है लाल कपड़े पहन लिए, जब भी कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी के अंतर्गत है कोई आके पास बैठ गया है, जानता नहीं मैं महात्मा हूं, तुमको ठीक ढंग से बैठना चाहिए, तो क्या हो गया, अब भले ही तुमने कहा कुछ भी कहा, भले ही शिष्टाचार के अनुकूल कहा हो, लेकिन उसके हृदय में तो बोलने का एक ढंग है, तो कैसे बोलना है और तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, तो इसलिए संकेत किया हमारा व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। इसलिए शास्त्र इसका निषेध नहीं करता, तो कहा कि जिह्वा में मधुमत्तमा और कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, क्या संकेत किया, कानों के द्वारा बार बार शास्त्र जो है यही संकेत करते हैं, भद्रम करणे भी, क्या कहते कानों से क्या सुने, कल्याणकारक से। और इतना ही नहीं कहा, कैसा सुने तो यहां तो ये और कह दिया, विश्रुवम, विशेष रूप से, अर्थात मैं इतना सुनने वाला हो जाऊं कि सुनने से कभी उपरतता न हो। और तुलसीदास ने तो लिखा ही भरे न पूरे है, संकेत कर दिया, कभी भी जो है निरंतर सुनते सुनते भी ये कभी भरते नहीं, ऐसी जो है स्थिति जब आ जाएगी, लेकिन किसको सुने ये भी ध्यान रखना। यहां जिस लक्ष्य की चर्चा की गई, ऐसे अपने पुरुषार्थ के हेतुभूत जो वाक्य हैं, जिन वाक्यों के द्वारा हमको वह ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ऐसे उन वाक्यों को सुनने के लिए कहा, और उन वाक्यों के लिए कहा कि उन वाक्यों से कभी भी जो है हमको परामता न हो। तो इसलिए संकेत किया कि बहुत सुनने वाला मैं हो जाऊं, अर्थात वह सुनने वाला हो जाऊं, अर्थात सुनने से मुझे कभी उपरामता न हो, लेकिन सुनना भी क्या ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कर्णाभ्याम भूज विश्रवम, और फिर इस प्रकार से बतलाते हुए उसी की तरफ संकेत कर दिया, ब्रह्मणा कोशोसी, तुम जो है क्या हो, ओंकार को संकेत किया, तुम उस ब्रह्म के कोश हो, आवरण हो, समीपी हो। इसलिए फिर क्या है, कहने लगे मेधया पीता, लेकिन तुम कोश किस रूप में हो, ये भी संकेत किया। तो संकेत कर दिया कोश है मेधा के रूप में। अब मेधा क्या, तो व्यष्टिगत बुद्धि, और उस बुद्धि में रहने वाली मेधा वही उसके लिए क्या बन गई है, आवरण बन गई। समष्ट्यात्मक बुद्धि और उसमें रहने वाली मेधा उसके लिए आवरण नहीं है, ठीक है ना। समझना यह पड़ेगा कि हमारी व्यष्टात्मक जो बुद्धि है और उस बुद्धि में जो क्या नाम मेधा है, अर्थात ग्राहक जो शक्ति है, उसी में गड़बड़ हुआ है। वो बुद्धि को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उसी में बल नहीं रह गया, और उसमें ये बल न रहने के कारण हम जो है उसके समीप होते हुए और हवड़ होते हुए भी उसे पहचान पा रहे नहीं। इसलिए संकेत किया मेधया पीता, वह जो है उस मेधा से ही ढक गई है। इसलिए क्या होना चाहिए, श्रुतम वे गोपाय, मैं बहुत सुनूं, लेकिन सुनूं तो बहुत, और सुनते भी सारे दिन सुनते रहते, लेकिन कहने लगे वह जो मेरा सुना हुआ है, तो उस देवता से प्रार्थना करते हैं, श्रुतम में गोपाय, मेरे सुने हुए की रक्षा कर, मैं जो सुनता हूं वो मेरे में टिके, ऐसा नहीं कि सुन लिया और चला गया, तो वो जो मैंने सुना है उस सुने हुए को मेरे को तू स्मृति में ला, अर्थात वो मेरे से विस्मृत न हो, मन उसमें मेरा प्रमाद न हो, मैं प्रमाद से रहित हो जाऊं, विस्मृति आदि से रहित हो जाऊं, इस प्रकार से मेरे सुने हुए की तू रक्षा कर, तो श्रुतम वे गोपाय, मेरे श्रवण की रक्षा कर। और ऐसा कहते हुए फिर आगे पुनः कहते हैं, आवहंती और वितनवाना, आवंती माने मेरे लिए लाओ, ऐसी बुद्धि को मुझे प्राप्त कराओ, लाओ माने ऐसी जो है बुद्धि मुझे प्राप्त कराओ, मन में ऐसी बुद्धि मुझे दो, और उस बुद्धि के साथ साथ हैं क्या करो, कहा वितनवाना, जिस उसका विस्तार करो, उस बुद्धि का विस्तार, और साथ में वह लक्ष्मी भी मुझे प्राप्त हो और उस लक्ष्मी का भी विस्तार हो। तो ये जब चीजें होंगी तब हमारे अंदर वह सामर्थ्य आएगी। इसलिए यहां पर इस मंत्र में ये चर्चा की गई। आगे पुनः जो है संकेत फिर करते हैं उसी मंत्र के नीचे, कुर्वाणा चीरमात्मनः, क्या संकेत किया, आत्मनः अचिरम है कुर्वाणा, मेरे को क्या करो, अचिरम माने शीघ्र, न चिरम इति अचिरम, माने शीघ्र, देरी न करो, देरी न हो, और क्या करो, कहा शीघ्र ही क्या कर दो, कहने लगे कुर्वाणा करो, क्या करो, तो संकेत करते श्रीवान करो, लक्ष्मीवान करो, लक्ष्मी की याचना करते। अब लक्ष्मी क्या क्या चाहिए, तो जो पूर्व में संकेत कर दिया बल, बल कब होगा, तो उसके लिए कहा लक्ष्मी की भी आवश्यकता, को लक्ष्मी वो श्री क्या है, तो कहने लगे वासांस मम गवाश्च, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, का वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र रूपी वह श्री जो है मुझे क्या प्राप्त कराए, का वस्त्रों की प्राप्ति कराए, वासांस और गवाश्च, गावश्च मने गौएं, और जब गौएं होंगी तो दूध मिलेगा, घृत मिलेगा और छाछ मिलेगी, और वो क्या करने वाली है, आयुर्वेद घृतम। आजकल तो आयु मृत्यु बन गई, वो क्या नाम, घी ही मृत्यु बन गया। आजकल घी कोई खा ही नहीं सकता, बहुत से अल्प लोग घी खा सकते हैं। क्यों? उसका कारण यही है, क्योंकि जो क्रम बतलाया गया उस क्रम से हम हटते चले। पहले इतना परिश्रम होता था और लोग इतना इतना कटोरे भर करके घी खा जाते थे, और घी को आयु शास्त्र में तब कहा था, लेकिन आज हमारे जीवन में वो परिश्रम नहीं है, और परिश्रम नहीं है तो उसे पचा कहां पाओगे, अजीर्णता लाएगा, और अजीर्णता लाएगा तो जो बल दे करके तुम्हें जो है बलवान बना करके और लक्ष्य की तरफ ले जाए वो तुम्हें निर्बल बना देगा, तो तुम लक्ष्य की तरफ से कहां जाओ। तो ये सब संकेत, इसलिए यहां संकेत करते हैं वयांसी, वस्त्र भी चाहिए, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता है। तो वयांस ऐसी श्री से मुझे युक्त करो, गावस्त जो हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को देने वाली जो गऊ है, ऐसे उस श्री से, ऐसे उस साधन से भी मुझे पुष्ट करो, अर्थात वो भी मेरे लिए लाओ। और अन्न पाने च सर्वदा, और फिर संकेत एक साथ कर दिया, जो भी अन्न और पीने योग्य जो भी है वो सब जो है मुझे प्राप्त कराओ। और ये सब प्राप्त कराते हुए फिर कहने लगे, ततो श्रिय मे श्रियम आवय, और फिर इस प्रकार से ये सब प्राप्त कराते हुए पुनः जो वो श्री है वो जो मुझे श्री की प्राप्ति कराए, वो श्री क्या क्या है, तो कहने लगे इतना ही नहीं, आगे संकेत किया, लोम साम पशु भी सह स्वाहा, इस पास शब्द की चर्चा भी करें, तो लोम साम मैं लोम से युक्त, अर्थात जो भेड़ बकरियां हैं उनके बाल होते हैं, लोम होते हैं, इसलिए कहने लगे वो भेड़ बकरी आदि भी क्या है, मनुष्य की एक संपत्ति है, एक श्री है, और उनके साथ में पशु भी मैंने जो अन्य पशु गाय आदि जो हैं, है वो भी अश्व आदि है, वो सबको लेकर के यहां ले लिया जाए, तो सह शब्द से उनको ग्रहण कर लेंगे, तो इस प्रकार से उन सारी स्त्रियों की भी मुझे है प्राप्ति कराओ, वो लक्ष्मी मेरे जो है मेरे लिए उनको लाए, ऐसा। और फिर ये सब कहते हुए अन्नपान आदि की भी बात कह दी, पशुओं की, इन सब से जब संपन्न हो जाओगे तो आपका रहन सहन, आपका खान पान सब व्यवस्थित होगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और जब टेंशन नहीं होगी तो फिर आपका मन भी प्रसन्न होगा, ऐसे प्रसन्न मन से ही फिर आगे की साधना हो सकता। और जब मन ही प्रसन्न नहीं है तो वहां ये साधना होती नहीं, श्रवण किया हुआ भी श्रवण नहीं होता है, क्योंकि जब टेंशन युक्त मन होता है, मन हमारा विक्षिप्त होता है, तो सुना हुआ भी हमारे में बगैर सुना हो जाता, क्यों, वो टिक पाता नहीं, उसका तात्पर्य भी समझ में नहीं आ पाता। तो इसलिए संकेत किया कि इन सब से जब हम युक्त हो जावे तब उसके बाद कहा अब क्या करो, तब कहने लगे आमायन्तु ब्रह्मचारिणः, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः मने ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, ठीक है ना, मने उस ब्रह्म की चर्या करने वाला जो है, ब्रह्म का आचरण करने वाला जो है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहां वेद, तो वेद का आचरण करने वाला है, वेद की अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला है, उसको क्या कहेंगे, कहा वो है ब्रह्मचारी। अब उसके अंतर्गत जितने धर्म ब्रह्मचारी के हैं वो सब आ जाएंगे, तो वेद क्या निर्देश देता है, वेद की क्या अनुज्ञा है, तो वेद में आस्था रखते हुए, वेद की अनुज्ञा को स्वीकार करते हुए यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, तो कहा ब्रह्मचारी है। वे केवल एक अवस्था विशेष को ही नहीं, उस अवस्था विशेष में उसका विधान किया गया कि उस समय बुद्धि जो है ग्राहक शक्ति अच्छी होती, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम, इसलिए वो किया गया। लेकिन ब्रह्मचारी शब्द का यहां तात्पर्य सीधा है कि जो वास्तव में उस वेद की अनुज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाला है, वेद की अनुज्ञा को मानने वाला है, वह ब्रह्मचारी। तो ऐसे वह ब्रह्मचारी मन वे वेद की अनुज्ञा मान करके उस वेद के अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हैं, ऐसे उनको है आयन्तु माम मेरे लिए लाओ। अब जब वो मेरे पास आएंगे तो आप जानते हो संगत से ही क्या होता, गुड़ भी होते हैं और संगत से ही, और ऐसे जब आएंगे तो फिर हमें क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो है वही तो देंगे, उनके पास यदि होगा नहीं वो कहां से दे देंगे। तो वो वेद की अनुज्ञा क्या है, और वेद का उस अनुज्ञा के द्वारा प्रेरणा कहाँ है वह भी हमें प्राप्त होगा, और तद अनुकूल जैसे वो आचरण करते हैं तो वैसा ही आचरण हमारा भी बनेगा। यद आचर श्रेष्ठ तत्त देव, तो ये जब स्थिति होगी इसलिए यहां संकेत किया ऐसे उन ब्रह्मचारियों को लिए को है मेरे पास लाओ, ये संकेत किया। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब वो ब्रह्मचारी आए तो लेकिन आकर के वो छल कपट रखें, वो मनी ईर्षा रखें और अपनी वस्तु हमको न देना चाहें, छिपा के रखना चाहें, तो उनसे क्या लाभ होगा। इसलिए कहा कि विमावयन्तु, माने वो ब्रह्मचारी आए लेकिन कपट न रखें, कपट से रहित होकर के मेरे पास आए, अर्थात मेरे प्रति कोई छिपाव न रखें, ऐसा संकेत किया। और ऐसा संकेत करते हुए आगे संकेत करते हैं, कहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, प्रमा माने माने प्रकृष्ट ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान। अब जब इस प्रकार का संयोग बनेगा तब क्या मिलेगा, तब जो यथार्थ ज्ञान है, परमात्मक ज्ञान है, वह ज्ञान तब होगा, तब जो है उनके द्वारा क्या है मुझे प्रमा जो ज्ञान है उस प्रमा ज्ञान वाला मुझे बनाओ या वो मेरे लिए लाओ, अर्थात तो उसकी प्राप्ति कराओ। तो इसलिए संकेत किया प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, वह ब्रह्मचारी जो है स्वयं भी प्रमा से युक्त हो और मुझे भी वह प्रमा ज्ञान कराए। ये संकेत करते हुए फिर अंत में और कह दिया, तो वो पहली ही सीढ़ी लेकिन उसे अंत में फिर दोहरा रहे, वो क्या कहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः, है स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः, मैंने वो ब्रह्मचारियों के लिए भी कह दिया, वो ब्रह्मचारी हमारे लिए, दोनों ही तरफ से संकेत करता। मैंने क्या करें तो दम शब्द का अर्थ आप जानते हो इंद्री निग्रह, और सम शब्द का जो है मनो निग्रह। तो जब तक इंद्रिय संयम और मन का संयम नहीं होगा तब तक ये जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना भी सुचारू रूप से होगी नहीं, और उस प्रार्थना गत जो है तात्पर्य है वो भी जीवन में नहीं आए। इसलिए संकेत कर दिया है अंत में कि क्या होना चाहिए, कि हमारे जीवन में दम होना चाहिए, हमारे जीवन में सम होना चाहिए, माने इंद्रियों का संयम होना चाहिए और मन का भी संयम होना चाहिए। यद्यपि ऊपर ये संयम ही बतलाया, ऊपर जो जो कहा है वो क्या है संयम के अंतर्गत। संयम का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं, किंतु आंख के द्वारा एक विवेक प्राप्त करना, क्या उपादेय है और क्या है। उपादेय जो है उसको जब आंख से आपने परीक्षण कर लिया तो मन जो है उसी उपादेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो, और जो अनुपादेय है उसका त्याग करे, यही इंद्री और मन का संयम। ऐसे ही शब्द कान के द्वारा सुना तो उसमें उपादेयता और हेता का ज्ञान करते हुए और उपादेय को मन ग्रहण करे तो इंद्रियों का ये संयम है, इसी का दम और सम करके नाम कह देते। माने तो इंद्रियां जो है उस हे की तरफ न जाएं और मन भी कभी उसका चिंतन न करे तो हो गया सम और दम। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, ऐसी चर्चा आगे चर्चा कल ओ